الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ رب العظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سناتے تھے کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہندوستان کے بڑے عالم گزرے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور حضرت شیخ الحدیث نے اس واقعے کو اپنی آپ بیتی میں بھی لکھا ہے اور آ کر چونکہ ماں حبیب الرحمان صاحب سیاست سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں میرا بھی کہیں سفر ہے شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب سے کہ میرا بھی کہیں سفر ہے میں سفر پر جا رہا ہوں اور سفر سے آ کر میں نے 3 دن رکھے ہیں آپ کی خدمت میں گزارنے کے لیے کہ میں 3 دن آپ کے پاس رہوں گا اور آپ سے مجھے یہ سمجھنا اور سیکھنا ہے کہ تصوف کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو ابھی بتا دیتا ہوں میں تمہیں. کہا نہیں حضرت وقت کم ہے میرے پاس ابھی ٹرین کی روانگی کا وقت قریب ہے بس میں ٹرین پر جاؤں گا اور آگے سفر ہے آ کر میں آپ سے اس سلسلے میں مناظرہ اور بحث کروں گا. تو شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ بھائی ابھی جواب لیتے جاؤ. کہنے لگے کہ حضرت ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے میں بعد میں آپ سے آ کر یہ اس پر پوچھوں گا. تو فرمایا کہ بھائی ابھی سوال لیتے جاؤ. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ بھائی سن تو لو میری, کیونکہ انسان ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی سے سوال پوچھتا ہے تو اپنے ذہن میں خود مفروضات لے کر جاتا ہے کہ یہ جواب دے گا تو میں یہ کہوں گا اور یہ کہے گا تو یہ کہوں گا, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ استفادہ نہیں ہوتا. کیونکہ استفادے کے لیے ضروری ہے کہ برتن خالی ہونا چاہیے. لہذا جب کوئی بات سیکھنی اور سمجھنی ہے تو خالی اس ذہن آ کر بیٹھے, اور پوچھنا ہے تو ذہن کو خالی کر کے پوچھے کہ مجھے, یعنی گویا کہ اس بات سے کو سمجھے کہ میں مجھے पूछने की जरूरत है और मुझे सीखने की जरूरत है। अपने को तालिब इल्म समझे और तालिब समझे कि मैं पूछूंगा और मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि जो आदमी ये समझेगा कि जहन में लेकर जाएगा कि मुझे तो मालूम है और कुछ ना कुछ आता ही है, तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर वो खामखा के इश्कालात कायम करता रहेगा। इसलिए इसका सबसे आसान तरीका और हल ये है कि वो खाली उस जहन होकर जाए। इसलिए ये भी फरमाया गया कि जब अल्लाह वालों के पास जाए, बुजुर्गों के पास जाए और अपने शेख के पास जाए तो जहन को खाली करके जाए। यहां तक के इस जमाने के एतबार से अपने मोबाइल को भी बंद करके जाए। वाइब्रेशन पर भी होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जहां वाइब्रेशन बजी अब जहन वहां चलेगा, तो वो जो शेख का जो फैज है वो मुंतकिल नहीं होगा। लोग पूरी बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है, जिसका नतीजा और नुकसान ये होता है कि आधी बात सुनते हैं और जहन कहीं और लगा होता है, फिर उस आधी बात में भी अपनी ख्यालात और अपने अफकार और अपने उलूम को गालिब रखते हैं, जिसका नतीजा है कि एक जमाना रहने के बावजूद महरूम रहते हैं। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि एक बुजुर्ग थे, उन बुजुर्ग की सोहबत में एक शख्स आया। अगले दिन उन्होंने उसको खिलाफत दे दी। अब जनाब वो जो पूरी खानका में तहलका मच गया, कहा इसको देखो ये कल का लौंडा है और इसको खिलाफत मिल गई और हम यहां बरसों से रगड़े खा रहे हैं, कितने कुर्ब के मकामात तय कर चुके हैं और हमें अब तक खिलाफत नहीं मिली। तो जिसको याद रखिएगा, कोई अगर कोई शख्स किसी मुरीद पर कोई एतराज करता है तो दर हकीकत तो शेख पर एतराज है ना भाई। अगर कोई किसी मुरीद को शेख खिलाफत दे दे तो वह एतराज तो शेख पर हुआ कि इनको दी हमें नहीं दी। और जिसने शेख पर एतराज किया, ऐसा शख्स तो कामयाब कभी नहीं हो सकता, फलाह नहीं पा सकता। तो बहरहाल वो बुजुर्ग समझ गए कि ऐसा वाकया शेख जुनैद बगदादी का भी आता है, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी आता है। तो उन बुजुर्ग ने अपने मुरीदीन से फरमाया कि हमें लकड़ी चाहिए आग जलाने के लिए, जरा गीली लकड़ी लेकर आ जाओ। हमें लकड़ी चाहिए। तो अब मुरीदीन ने, मेरे शेख फरमाते हैं कि तमाम मुरीदीन गए और जंगल से गीली और उम्दा लकड़ी लेकर आ गए। कहा अब इसको आग लगाओ। अब जब आग लगाई तो गीली लकड़ी कहां आग पकड़ती है, मेहनत घंटों लगे रहे लेकिन वैसा क्या वैसा मामला रहा। शेख ने फरमाया कि भाई ये तो मामला हो रही, अच्छा एक काम करो सूखी लकड़ी ले आओ। सूखी लकड़ी लाए और उसको आग लगाई, बस सेकेंडों में आग भड़क गई। तो फरमाया कि देखो तुम लोग सब के सब गीली लकड़ी की तरह, और ये जो आया ये सूखी लकड़ी की तरह है। मैं तुमको रोजाना अल्लाह ताला की मोहब्बत की आग लगाता हूं लेकिन तुम गीली लकड़ी की तरह हो। तुम क्या करते हो कि गुनाह का पानी उस पर डाल देते हो। हुब्बे जा, नाफरमानी, हराम शहवत, इसका पानी तुम डालते हो, नतीजा ये होता है कि आग फिर बुझ जाती। लहजा हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया कि मारूमी ने किस्सा लिखा है कि शेख की मेहनत को मुरीद कैसे बर्बाद करता है, उस पर एक किस्सा लिखा है। फरमाते हैं कि एक घर में चोर आ गया तो घर वाले के आंख खुल गई और उसने जब देखा कि घट की आवाज आई तो उस जमाने में चकमाक पत्थर होता था जिसे को रगड़ते थे तो आग जलाई जाती थी। अब वो क्या करता है कि जैसे ही वो चकमाक पत्थर रगड़ता वो फौरन उंगली रख देता चोर, कि अगर इसने लाइट जल गई तो ये तो देख लेगा। अब उसको पता नहीं चोर मेरे पास ही खड़ा है। नतीजा ये हुआ कि वो जलाता रहा ये बुझाता रहा। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही होता है कि शेख अल्लाह ताला की मोहब्बत की आग जलाने की फिक्र करता है और वो मुरीद गुनाह करके उस मेहनत को जाया कर देता है, जिसका नतीजा यह है कि मुद्दत गुजरने के बावजूद वहीं का वहीं रहता है। और फिर उल्टा एतराज भी शेख पर होता है कि इसकी सोहबतों से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इत्तबा करता, बात मानता, अमल करता तब तो बात थी, अमल हम ना करें और इल्जाम शेख पर डाल दें तो नतीजा क्या होगा? सारी जिंदगी, दो चार साल क्या, सारी जिंदगी मेहनत करता रहे। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह इसको एक और मिसाल से समझाया करते थे। फरमाते थे कि देखो एक आदमी हंडिया पका रहा है। अब हंडिया पकाने के लिए जरूरी है कि उसका पानी खुश्क होना चाहिए। अब पानी खुश्क होने के करीब तो उसने देखा कि दो मेहमान और आ गए, उसने थोड़ा सा एक आधा गिलास पानी और डाल दिया। नतीजा ये होगा कि हंडिया फिर तैयार नहीं होगी। फिर मेहनत की आधा घंटा तो दो मेहमान और आ गए, उसने आधा गिलास पानी और डाल दिया। करते करते दो घंटे गुजर गए, उसने कहा कि देखो ये किताब में लिखा हुआ है कि दो घंटे में खाना तैयार हो जाता है और मुझे छह घंटे हो गए लेकिन अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, ये तो किताब गलत है, ये तो किताब में गलत लिखा हुआ है जबकि दो घंटे में खाना तैयार होना चाहिए था। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बात तो ठीक लिखी हुई है, कुरान और हदीस में जो फजाइल हैं और जो बरकात और जो दीन पर अमल करने की रहमतें हैं वो तो हैं, लेकिन बात यह है कि हम भी तो गुनाह से बचें। हम जो गुनाह का पानी उसमें डालते रहते हैं तो उसका नतीजा ही है कि बावजूद इबादात के, जिक्र के, तिलावत के, नेक अमाल के, इन तमाम चीजों के बावजूद वहीं के वहीं खड़े हुए, मुद्दत गुजर जाती है लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं, हिल नहीं से। फरमाया ये उसी की वजह है कि हम जो गुनाह करते हैं छुप छुप कर तो उसका नतीजा ये निकलता है कि सोहबत शेख का फायदा नहीं होता। हजरत वाला रहमतुल्लाह ने एक तस्बीह बताई है पहले कलमे की, एक तस्बीह अल्लाह का नाम, एक तस्बीह इस्तिगफार, एक तस्बीह दुरूद शरीफ, चार तस्बीहात। और वो इसलिए फरमाया कि एक वजह तो यह कि सेहत पहले जैसी नहीं है, फिर दूसरी बात यह कि हमें अल्लाह ताला के नाम का चस्का नहीं लगा। मौला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नाम ओचू बर जबानम मीरवत हर बुने मुंह अज असल जुए शवत। जब अल्लाह का नाम मेरी जबान से जारी होता है तो मेरे जिस्म का बाल बाल दरियाए शहद बन जाता है। और हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, लज्जते दो जहां मिली मुझको तुम्हारे नाम से, लज्जते दो जहां मिली मुझको तुम्हारे नाम से, और मुझको तुम्हारे नाम से लज्जते दो जहां मिली। लेकिन हमें अल्लाह ताला के नाम का मजा और चस्का नहीं है। इसका नतीजा यह है कि हम जिक्र पर राजी नहीं है और हम जिक्र का एहतमाम नहीं करते। तो जो आदमी जो जिक्रुल्लाह नहीं करता, नया है, उसको कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा अल्लाह का नाम ले, थोड़ा थोड़ा जिक्रुल्लाह कर, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर तुझे जिक्र का चस्का लगेगा और फिर उसकी वजह से तू फिर शेख जब देखेगा कि इसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई تو اس کی ذکر بھی بڑھائے گا. اب لوگوں کی پہلے دن سے فرمائش ہوتی ہے کہ لمبے لمبے ذکر بتا دو, تو یاد رکھیے گا کہ صرف ذکر اللہ سے کام نہیں بنے گا. کہ کوئی آدمی کہ جی گاڑی پہ سفر ہوتا ہے, اگر کسی کو حیدرآباد جانا ہے تو گاڑی خرید لے اور گاڑی پہ سفر ہوتا ہے. اب اس کے بعد وہ گاڑی چلا رہا تھا, رستے میں گاڑی بند ہو گئی, بڑا پریشان, کمپنی کو فون کر دیا, کمپنی نے اس کو کہا تھا کہ آپ کی گاڑی جہاں بند ہوگی ہم ذمہ دار ہیں ایک سال تک آپ کو اس کی فری سروس دیں گے. اب ہائی وے پر گاڑی بند ہو گئی, کمپنی والے کو فون کیا کہ بھائی یہ کیا آپ نے گاڑی دی, یہ تو بند ہو گئی. کمپنی والے پہنچ گئے, حیران ہو گئے کہ نئی گاڑی ہے اور بند کیسے ہو گئی. کمپنی والے آئے, انہوں نے کہا بھائی بونٹ کھولو. بونٹ کھولا, تارے وارے چیزیں دیکھیے سب صحیح ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. یا اللہ کیا معاملہ ہے, گاڑی میں بیٹھے اگنیشن آن کیا, گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی. اب جو اس نے میٹر پر نظر ڈالی, اس نے پوچھا کہ آپ نے اس میں پیٹرول ڈالا تھا؟ کہا نہیں پیٹرول تو نہیں ڈالا. تو کیا پوچھا کیا کہ وائی فائی سے چلے گی گاڑی کیا؟ کہا آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ اس میں پیٹرول بھی ڈال لیں. ہے کوئی عقل مندی کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں پیٹرول, آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ گاڑی کے اندر پیٹرول بھی ڈال لیں. تو بتائیے آپ, اب اگر وہ یہ کہے تو اس کا کیا یہ شکایت کرنا بجا ہے کیا؟ تو میرے پیارے دوستو, اسی طریقے سے جب گاڑی لیتا ہے تو گاڑی کو پیٹرول بھی ڈالنا ہوتا ہے, اس کی باقاعدہ سروس بھی کرنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس چیز کا بھی یاد رکھے کہ جہاں اللہ تعالی کی محبت میں آگے بڑھتا ہے تو جس طریقے سے ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا اسی طریقے سے گناہ سے بھی بچنا ہوگا. آج ہماری عبادات, ذکر اور تلاوت, نیک اعمال کے باوجود ہم سکون قلب سے جو محروم ہیں, اس کی وجہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے, بلکہ عبادت کرنے سے پہلے, عبادت سے پہلے گناہ, عبادت کے بعد گناہ. مثلا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دیکھو نظر کی حفاظت کرو, کسی غیر اللہ کو مت دیکھو, نہ حسینوں کا دیال خیال دل میں پکاؤ. آپ حضرات بھی آگے آ جائیں, دیکھیے اللہ تعالی کی نعمت, نیا پتھر لگا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. ماشاء اللہ, تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ایک آدمی بد نظری کر رہا ہے, حسینوں کو دیکھا, نظر مار کر آیا اور آ کر مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے, ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوگا لیکن اس کے دل کا جو رخ ہے, اگرچہ سینہ قبلہ کی طرف ہے لیکن اس کے اپنے دل کا رخ اس حسین کی طرف ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا, یہ واقعہ بھی میرے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک شخص بدنظری کر کے باہر بدنظری کی حضرت کی صحبت میں آ کر بیٹھا, توبہ بھی نہیں کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اس کے چہرے پر نظر پڑی اور فرمایا کہ ما بالو اقوام یترشح من اعینہم الزنا, کیا حال ہے ایسی قوم کا کہ جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد نظری کو آنکھوں کا زنا فرمایا. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو انداز تربیت دیکھو, یہ نہیں فرمایا کہ تم نے زنا کیا ہے تم آنکھوں بد نظری کر کے آئے ہو. فرمائے عام अल्फाज को ले लिया कि क्या हाल है ऐसी कौमों का कि जो जिनकी आंखों से जिना टपकता है, उसकी इज्जत भी रख ली, लेकिन उसको हकीकत भी बता दी कि जो आदमी बदनजरी करता है ये अल्लाह वालों पर, अहलुल्लाह पर, क्योंकि उनके कुलूब में लताफत होती है, उनके कुलूब पाक और साफ होते हैं, लिहाजा उस लताफत की वजह से जो कसाफत और गलाजत और गंदगी वो नजर आ जाती है। और याद रखिएगा, ये कश्फ नहीं है, ये कश्फ से भी ऊंची चीज है, ये कश्फ से भी ऊंची चीज है जिसको फिरासत कहते हैं, और ये उससे भी ऊंची चीज है जिसको सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकू फिरासत अल-मुमिन फइन्नहु यन्ज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो अब ये शख्स बदनजरी कर रहा तो इसको इबादत का मजा मिलेगा। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फरमाया तुम दीन की क्या बात करते हो, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। गुनाहगार आदमी, उसका दीन तो बर्बाद होता ही है, वल्लाह उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। ना वो सोने का, ना जागने का, ना सुबह का, ना शाम का, ना दिन का, ना रात का, ना घर का, ना घाट का, बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह क्या हो जाता है। धोबी, ये मसल सुनी है ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। ऐसा शख्स न दीन का होता है, ना दुनिया का होता है। इस शख्स की का दीन तो बर्बाद होते ही होता है, वल्ला इसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। क्यों? दिल जिसका फंस गया हो किसी जुल्फे यार में, दिल जिसका फंस गया हो किसी जुल्फ यार में, क्या लगेगा जी उसका किसी कारोबार में। दुनिया के काम में भी उसका दिल नहीं लगता। यह है गुनाह की नहुसत। इसलिए ऐसे शख्स को इबादत से भी चैन नहीं मिलेगा, जिक्रुल्लाह से भी चैन नहीं मिलेगा। इसलिए गुनाह से बचने का एहतमाम यह जरूरी है। इसलिए मेरे शेख और रहमतुल्लाह अलैह क्या आसान फरमाते थे, देखो इबादत चाहे थोड़ी कर लो। हजरत फरमाते कि मैं ये नहीं कहता कि तुम लंबी लंबी इबादत करो, इबादत चाहे थोड़ी करो लेकिन गुनाह से ज्यादा बचो, गुनाह से बचने का एहतमाम ज्यादा करो। तो फरमाते उसका नतीजा ये निकलेगा कि थोड़ी इबादत भी तुम्हारे कल्ब को नस्बत में अल्लाह और ताल्लुक में अल्लाह की दौलत दिला देगी। और इसकी मिसाल समझाने के लिए आसान बात, फरमाए एक आदमी थोड़ा खाना खाए, थोड़ा थोड़ा खाए, चटनी रोटी खाए, सादा खाना खाए, लेकिन जहर न खाए, इसकी सेहत कैसी होगी? अच्छी होगी ना। और उसके बरस एक शख्स मुर्गे खाता है, देसी मुर्गे, देसी अंडे, कढ़ाइयां और कटाकट खाता है। और याद रखिएगा, कटाकट में पावर मशीन खाना हराम है, समझ रहे ना? पावर मशीन समझते हैं ना, जिसको उर्दू में कपूरे कहते हैं। साफ इसलिए कह दिया कि कोई ये ना कहे, समझे अगर नहीं तो साफ साफ बता दिया उसको। याद रखिएगा, उसका खाना हराम है, उसका खाना हराम है। इसलिए कपूरे खाना हराम नहीं है, वो कटाकट खाना हराम नहीं है, कटाकट खाने की इजाजत है, लेकिन उसमें मगज डलवाए, गुर्दे डलवाए, दिल डलवाए और फिर कटाकट कटाकट बनवाए। अगरचे साला हो लेकिन मसाला अपनी मर्जी का डलवाए, किसी को तेज मसाला पसंद, किसी को हल्का मसाला, कोई मसला नहीं। लेकिन जिस चीज को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया, शरीयत ने जिसको हराम फरमाया, उससे बचे। अब एक शख्स कटाकट खाता है, सूप पीता है, देसी मुर्गी के अंडे खाता है, मान लो 51 मुर्गियों का सूप पीता है। एक हमारे यहां पहलवान गुजरा है जो कि 51 मुर्गियों का सूप पीता था और 21 अंडे रोजाना खाता था और पूरा बकरा रोज एक वक्त में खा लेता था, लाहौर का पहलवान। तो मेरे शेख फरमाते थे कि अगर पहलवान भी पहलवानों वाली गिजा खाएगा लेकिन जहर से नहीं बचेगा तो सेहत नहीं मिलेगी। इसलिए पहले जमाने में पहलवानी होती थी, हर मोहल्ले में अखाड़ा होता था जिसमें मिट्टी वगैरह और सब कसरत किया करते थे, यानी वर्जिश और एक्सरसाइज करते थे। हर मोहल्ले में पहलवानों का अखाड़ा होता था, तो पहलवान के पास जाते थे। उस जमाने के पहलवान भी एक बात कहते थे, कहते थे कि देखो पहलवानी अगर करनी है ना तो दूध बादाम तो ठीक है, तुम्हें मजे का लगेगा, तुम्हें खाना होगा, लेकिन खबरदार किसी नामुनासिब जगह अपना पजामा मत खोलना। अब आप बताइए, एक पहलवान भी अपने शागिर्दों को कहता था कि गलत काम मत करना, जिना बदमाशी के काम मत करना। पता नहीं उस जमाने के लगता है पहलवान भी मुल्ला होते थे, वो भी कहते थे कि ये काम मत करना, बेशर्मी और बेहयाई के काम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक पहलवान भी मना करता था कि बेशर्मी के काम मत करना। अगर अल्लाह ताला ने मना फरमाया तो मेरे शेख फरमाया करते थे कि वल्ला सुम्मा वल्ला, अगर गुनाह के अंदर हमारा कोई फायदा होता तो अल्लाह ताला कभी इसको मना ना फरमाते। पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने, पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है, तो फिर कायनात की किसी चीज को मना करना जबकि अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया, सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, ये दुनिया तुम्हारे लिए ही बनाई है, तुम्हारी है ये, लेकिन वइन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, लेकिन तुम्हें दुनिया के लिए नहीं बनाया, तुम्हें हमने अपने लिए बनाया है। अरे देखो ये बच्चा पार्टी, आप लोग पीछे जाओ, बेटा सब लोग पीछे हो जाओ, उधर चले जाओ, शाबाश, तुम बैठे रहो, सारे बच्चा पार्टी पीछे चले जाओ, बड़े रशीद साहब को आगे ले आओ, नए पत्थर पर बिठाओ। ताकि इस नेमत का शुक्रिया अदा हो, अगरचे अभी फिनिशिंग नहीं हुई है क्योंकि काम फिनिश नहीं हुआ ना। रशीद साहब छलांग नहीं मारिएगा वरना नीचे गिर जाएंगे, ये आखिरी हद है। तशरीफ रखें और आगे को हो जाएं, आप बैठे पहले ताकि देख लें हद क्या है, बॉर्डर आपको नजर आएगी, इधर नहीं दाएं बाएं तरफ देखें, बाएं तरफ ये देखा हद नजर आ गई ना, अब अगर आपने छलांग मारी ना नीचे गिर जाएंगे आप। आगे को हो सकते हैं आप अभी, हाँ बस ये सफ है, ये पहली सफ इस वक्त है, इंशाल्लाह बन जाएगा तो तीन सफे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा। फिर हमने कहा इसी नेमत से फायदा उठाए ना, क्योंकि नेमत का इस्तेमाल ये अल्लाह के लिए हो जाए, इस्तेमाल बन गई, अब इस पर बैठ जाओ। और अल्लाह का शुक्र है कुछ वजनी लोग भी यहां बैठे हुए हैं, इससे मुझे एतमाद हो गया काम ठीक हुआ है। क्योंकि फर्श को बराबर करने के लिए रोलर भी चलाना पड़ता है ना भाई, हम यहां सही है ना, कुछ वजनी भी बैठ गए ताकि इससे एतमाद हो गया कि हमारे ठेकेदार ने काम ठीक किया। तो मेरे प्यारे मुर्शिद और मेरे शेख फरमाया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये दुनिया तुम्हारे लिए है लेकिन तुम दुनिया के लिए नहीं हो, ये दुनिया तुम्हारी है तुम हमारे हो। ये दुनिया, ये जुमला याद रखना, ये दुनिया तुम्हारी है लेकिन तुम हमारे हो। अब आप एक बात बताइए, एक बाप अपने बेटे को कोई अच्छी चीज दिलाए, उसके बाद वो बाप पसंद करेगा कि वो बेटा उसी चीज में मशगूल रहे? दादा मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते थे कि पहले मां बाप ज्यादा खूबसूरत बहू नहीं लाते थे। कहते थे अगर ज्यादा खूबसूरत बहू आ जाएगी तो हम इसको बहू मालूम होंगे। बच्चों को डराते ना, बहू है बहू, यानी जिन भूत है। क्यों? वो कि ये नहीं कि मां बाप को छोड़ दे। तो लादा दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी है, लेकिन हम अल्लाह के लिए हैं। इसलिए मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये बात आह फरमाया करते थे मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह कि देखो कार हो, कार हो, कारोबार हो, लेकिन दिल में यार हो। तुम गाड़ी अपनी हैसियत है, गाड़ी लो, अच्छा मकान तुम्हारी हैसियत के मुआफिक बनाओ, लेकिन इसलिए ना बनाओ कि हम लोगों पर रोब डालेंगे, इसलिए मत बनाओ। अपनी राहत जरूरत के लिए रखो। राहत है, जरूरत है, राहत के लिए अच्छी चीज ले लो, कारोबार भी करो, लेकिन दिल किसी को मत दो, दिल सिर्फ अल्लाह को दो। अब कहते हैं साहब यही तो सारा मसला है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना शाह शफली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब ने कहा कि हजरत ये उलमा, ये अल्लाह वाले, इनके वाज में, इनके बयानात में, इनके खुतबों तकरीरों में ये बात होती है कि दुनिया से दिल मत लगाओ और अल्लाह ताला से दिल लगाओ। और उन्होंने कहा कि हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस शरीफ में आया कि रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद वफी रिवायतिन बिल मसाजिद, कि ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका और लटका होगा या मस्जिद के साथ जिसका दिल लगा होगा, ऐसे शख्स को कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हजरत ये कैसे मुमकिन है? हमारा तो हाल ये होता है कि जब हम मस्जिद में आते हैं तो याद आता है, अरे फलां से तो पेमेंट लेना भूल गए, अरे फलां से तो को तो हमने ये करना था, और फलां से ये काम था और वो काम था, 10 बातें हैं। खुसूसन नमाज पढ़े अल्लाह अकबर कहें, भूली हुई सारी बातें याद आएंगी। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम, मुज्तहिद और मुहद्दिस वक्त, एक शख्स आया हजरत के पास कि उस जमाने में लोग खजाना कहीं दफन करते थे अपने घर में या किसी जगह पर, तो उसने कहीं खजाना अपना दफन किया, अब वो भूल गया। अब बड़ा परेशान, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा कि हजरत मैंने कई खजाना दफन किया था, मैं उसका पासवर्ड भूल गया। यही भूलेंगे ना भाई इस जमाने में, तो क्योंकि लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, यूजर आईडी तो बना लेते हैं फिर पासवर्ड भूल जाते हैं। तो उसने कहा कि हजरत मैं तो उसका पासवर्ड भूल गया। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अरे भाई मेरा काम फिक्र के मसाइल बताना है, तुम मुझसे मसला पूछो, शरीयत पूछो, सुन्नत पूछो, मुस्तहबात पूछो, क्या चीज हराम है, हलाल है, मेरा काम यह बताना है। अगर तुम्हारा पासवर्ड नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? तो वो रोने लगा। उसने कहा हजरत उसमें तो मेरी बड़ी कीमती वो चीजें हैं, बड़ी कीमती इंफॉर्मेशन है, मेरा कीमती खजाना है, मैंने उसमें डॉलर रखे हुए हैं अपनी डार्लिंग के लिए, और उसमें मेरी सोने के क्वाइंस हैं, और बहुत सारा खजाना है उसमें, मेहरबानी कर। रोने लगा कि हजरत अल्लाह के लिए आप मुझे बता दें। इमाम साहब ने फरमाया अच्छा भाई एक काम करो, तुम आज रात इशा के बाद पूरी रात नवाफिल पढ़ना, अब उसने जैसे ही, उसने कहा बहुत अच्छा, बड़ा खुश हुआ, इमाम साहब एक अल्लाह वाले आलिम रब्बानी। अब उसने रात ईशा के बाद अभी अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू की, अभी सना मुकम्मल नहीं होती कि उसे पासवर्ड याद आ गया। उसको याद आ गया कि मैंने खजाना कहां रखा था। बस अब तो जनाब उससे नमाज पढ़, दो रकात पढ़ना मुश्किल हो गया। जल्दी से वला सरना अतना कह के ठका ठक सलाम फेरा और जाके अपना खजाना देखा, वहां माशाल्लाह मौजूद, निकाला और खुश और मजे से रात को लेक्सोटेरिल खा के सो गया। तो खुशी ये मारे भी तो नींद नहीं आती ना, कभी परेशानी से नींद नहीं आती, खुशी से भी नींद नहीं आती, याद रखिएगा। यही तो वजह होता है कि शादी की रात लोग सोते नहीं है, खुशी के मारे नहीं सोते। अलबत्ता एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि अब्बू मैं देखता हूं जब भी कभी शादी में जाता हूं तो मैं ये देता हूं कि जब शादी होती है तो दूल्हा बहुत हंस रहा होता है और दुल्हन बहुत रोती है। तो उसने पूछा कि अब्बू इसका क्या राज है। उसने एक बाप ने आह के चिरफ कहने लगा, चल बेटा तू अब बड़ा बालिग तो हो ही गया है, बालिग हो गया है, तेरी भी शादी होने वाली, अब तुझे मैं ये राज बता देता हूं। तो बाप ने कहा कि बेटा इसका राज यह है कि वो दूल्हा आखिरी मर्तबा हंस रहा है, अब सारी जिंदगी रोएगा, और वो आखिरी मर्तबा रो रही है, अब सारी जिंदगी रुलाएगी। अब जनाब उसने बड़ी मुश्किल से नमाज खत्म की और सो गया, खजाना लिया सो गया। सुबह को इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में गया और इमाम साहब से आकर कहा कि हजरत अल्लाह आपको जजाय खैर दे, आपके मसले, आपके बताए हुए अमल ने, आपके बताए हुए वजीफे ने मेरा तो काम कर दिया। आप एक काम करें, ये सर्विस ऑनलाइन शुरू कर दें। जैसे आजकल माशाल्लाह इस्तिखारा ऑनलाइन हो गया, इस्तिखारा ऑनलाइन, इस्तिशारा ऑनलाइन, बुकिंग ऑनलाइन। फिर लोगों ने कुछ मुल्लाओं पे जोर डाला तो कुछ मुल्ला आ गए, उन्होंने निकाह भी ऑनलाइन शुरू कर दिया। अब एक टेक्नोलॉजी का मुझे इंतजार है। यकीनन समझ गए होंगे, एक आदमी जा रहा था, एक आदमी हज करके आया था, सर मुंडवाया मुंडा हुआ था, तो वो जा रहा था, तो एक साहब ने, दुकान में तोता था, वो रोजाना वहां से गुजरते थे, तो तोते ने कहा अबे वो गंजे। अब उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बेशरम आदमी है, यानी बेशरम तोता है। तो उसने मालिक को कहा कि कैसा बदतमीज और बदतहजीब, इलिटरेट ये तोता है, इसको तमीज नहीं सिखाई। तो मालिक को भी गुस्सा आया, उसने उसको मारा तोते को और क्या शर्म करो, ये क्या तरीका है, ऐसे तुम बदतमीजी और बदतहजीबी करते हो। तोता, उसने कहा अच्छा मुझसे गलती हो गई, शर्मिंदगी से सर झुका ली। अगले रोज उनके साहब के वो गुजरगाह वही थी, गुजरते थे, अगले रोज वो फिर गुजर रहा था, वो साहब गुजर रहे थे तो तोते के पास से गए। अब तोता उनको देख रहा है और वो सर झुका गुजर गए। अब जाते जाते उनको भी हुआ, यार आज तोता कुछ बोल नहीं रहा ना, हमारे अंदर भी एक चीज होती है ना। उसने मुड़ के देखा, जब मुड़ के देखा तोता भी इन्हीं को देख रहा था। अब तोता कहता है समझ तो गए होगे ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आ गई, अब एक टेक्नोलॉजी का इंतजार है कि शादी के बाद ऑनलाइन बच्चा कैसे आता है। कोई वाईफाई टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए भाई इसके, चलो वाईफाई नहीं सही तो हाईफाई हो जाए। तो बहरहाल इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से उसने कहा कि हजरत मैं तो आपका जज़ाकअल्लाह कहता हूं कि आपकी बताए हुए वजीफे और अमल ने तो बस मेरा काम बना दिया, मैं तो आपका मोतकिद हो गया। इसलिए अजीब बात यह है, चलो एक बीच में बात है, जरूरी बात है इसलिए बतकह रहा हूं, कि अगर किसी आलिम से, मुफ्ती से मसला कोई बात पूछे, अगर वो मसला हमारी तबीयत के मुआफिक हो, जिसमें हमें नफा और फायदा हो ना, तो हम कहते हैं यार ये आलिम बहुत बड़ा आलिम है, ये बड़ा मुफ्ती है। हजरत आपको तो वेबसाइट बनानी चाहिए ताकि सारा आलम आपसे फैज उठाए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी आलिम ने मसला हमारी मर्जी के खिलाफ बता दिया, या उस मसले को बताने की वजह से हमें कोई नुकसान हो गया कि जी गलत बात थी, उसने मना किया, अब नुकसान उठाना पड़ेगा, तब कहते हैं कि यार उलमा को लोगों का ख्याल करना चाहिए, मौलवी साहब को थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएं, कुछ ऐसा करें कि लोगों को फायदा हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपसे किसने कहा? अगर आपसे किसी ने यह बात कही है कि दीन पर अमल करने से सिर्फ नफा ही नफा होगा और कभी आपको नुकसान नहीं होगा, और दीन पर अमल करने की वजह से कभी आपको तकलीफ नहीं आएगी, तो याद रखिएगा यह बात दुरुस्त नहीं है। अगर किसी ने अपने जहन में यह बात बिठाई बनाई हुई है कि मैं दीन पर करूंगा तो कभी मेरा नुकसान ही नहीं होगा, कभी मुझे गम ही नहीं आएगा, कभी मुझे तकलीफ ही नहीं आएगी, तो याद रखिएगा मैं साफ बात बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होता। इसकी सीधी सीधी मिसाल है, पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो सबसे प्यारे बंदे हैं, सबसे प्यारे, वो कौन है? अंबिया अलैहिस्सलाम। वो पूरे गुरु अंबिया अलैहिस्सलाम का जो पूरा गुरु है, पूरी कायनात में उनसे बढ़कर अल्लाह ताला का कोई महबूब, अल्लाह ताला का कोई प्यारा नहीं है। लेकिन आप सोचें, अल्लाह ताला के उन महबूबों के साथ क्या हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह फरमाया, आग में डाला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो रूहुल्लाह कहलाते हैं, उनको फांसी लगाने की कोशिश की गई, फांसी दी नहीं गई थी, याद रखिएगा। ये यहूदियों का अकीदा है, हमारा अकीदा नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, रफाहुल्लाह, अल्लाह ने उनको उठा लिया, और उठाया इसलिए लौटाने के लिए, आप दोबारा तशरीफ लाएंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए और अल्लाह ताला ने खुद इस बात को फरमाया, बल्कि यहूद के, यहूद की बदअहदी को फरमाया कि तुम कैसे हो कि हमने तुमको कितनी नेमतें की, लेकिन तुम अंबिया अलैहिस्सलाम को, अपने नबियों को कत्ल करते हो, उनको शहीद करते हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको जिक्र किया कि हमने तुमको से वादा भी लिया था, वही रखना मीसाकुम कि ला तस्रिकूना दिमाकुम, कि तुम लोग खून नहीं बनाओगे, तुम लोग खून नहीं बहाओगे, तुम किसी को कत्ल नहीं करोगे, लेकिन तुम कैसे जालिम हो कि तुमने नबियों को कत्ल किया। ये यहूदों का, बनी इसराइल का जिक्र किया कि तुम कैसे हो, जालिम हो कि तुमने अल्लाह से वादा भी किया था लेकिन उसके बावजूद तुमने अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। ऐसी ऐसी तकलीफें गुजरी। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला सल्लम, ताइफ का मैदान है, ताइफ का बाजार है, कितना मशहूर वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना, इतने पत्थर बरसाए गए कि जिस्म इतना लहू लुहान हो गया कि नालैन मुबारक, आपका वो जूता है मुबारक, नालैन मुबारक वो खून से भर गया, और आप वहां से तशरीफ ले चले और एक पहाड़ से जाकर टेक लगाकर बैठे और आप अपना खून पोछते जाते थे, और उस वक्त भी शफकत और रहमत का आलम यह था, फरमाया कि मा बालू अक्वामिन, क्या हाल होगा ऐसी कौमों का कि जो अपने नबियों को लहूलुहान करती है, जो अपने नबी को पहचानती नहीं है। कितनी तकलीफें उठाई। ओहद के दामन में आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, आपका मुआशी बायकॉट किया गया, कितनी तकालीफ से आप गुजरे। محرم کی نسبت دو بزرگ صحابہ سے ساتھ ہوتی ہے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یکم محرم آپ کی شہادت کا دن، ایک حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. کیسے یہ کتنی پیاری شخصیات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت جن کے لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آیتیں نازل کی ہیں، جن کے مشوروں کی تائید کے لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آیتیں نازل کی ہیں. اتنی پیاری شخصیت کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مشورے دیے، اللہ تعالی نے اسی مشورے کو قرآن پاک میں نازل فرمایا. اتنی عظیم شخصیت، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار، کیسا سواری کیسی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنے کندھوں پر سوار فرما کر ان کو لے کر جاتے تھے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی روزے کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں، کہ پانی وغیرہ سب بند کر دیا گیا، اور عاشقان حسین کا بھی حال دیکھیے، جس میں میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت سنیوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سنی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھرم رکھتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، اور ہم یہاں دودھ والے شربت، بادام اور پستے چھڑک کے پیتے ہیں. یہ محبت ہے جناب، سبحان اللہ. دودھ والے شربت، اور وہ بھی پستہ اور بادام چھڑک کے، یہ ہے عاشقان حسین کا حال. وکی بھائی کہے 10 محرم کا روزہ پہلی امت میں فرض تھا، کہ بھائی 10 محرم کا روزہ رکھ لو، اس کے ساتھ 9 کو ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے، آپ کے صحابہ نے بھی رکھا ہے، اور آپ کی بعثت سے پہلے یہود بھی روزہ رکھتے تھے. یہ بلکہ یہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اس لیے اس روزے کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی علمی بات یاد رکھیے گا کہ 10 محرم کو آپ کی شہادت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس روزے کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور یہ پہلی امتوں سے چلا آ رہا ہے. بلکہ یہ جو روزے کا یہ مسئلہ 10 محرم کے روزے کا، کہ 9 کا یا 10 کا ساتھ رکھو، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ فارمولا کہ 10 محرم کے ساتھ آگے یا پیچھے روزہ لگانا، یہ فارمولا صرف اور صرف 10 محرم کے ساتھ خاص ہے. لہذا پورے سال کے لیے یہ فارمولا نہیں ہے کہ پورے سال میں اگر کوئی روزہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جس کی فضیلت آئی ہے، جس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اس کے ساتھ آگے یا پیچھے روزہ لگانا یہ فارمولا وہاں درست نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ صرف اور صرف 10 محرم کے ساتھ خاص ہے. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے جو جوان ہیں ان کے سردار ہوں گے. تو آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دو صحابہ کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے بات فرما رہے ہیں، تو یہ بات آپ کی طرف سے نہیں ہوگی، یہ بات اللہ کی طرف سے ہے. تو اس سے پتا چلا یہ حضرات مقبولین ہیں. تو جب ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچی، تو یہ سمجھنا کہ دین پر عمل کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں آتی، تو یاد رکھیے گا یہ بات درست نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، اور وہ بات یہ ہے، ایک ہے تکلیف اور ایک ہے احساس تکلیف. ویسے تو یہ جملہ بھی کافی ہے میرا سمجھنے کے لیے. ایک ہے تکلیف और एक है एहसास तकलीफ। हजरत अय्यूब रज़ियल्लाहु, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका सब्र अय्यूब मशहूर है, और ये कुरान पाक ने फरमाई ये बात आपके सब्र को। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे शेख ये बात फरमाया करते थे कि मारूमी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में जो कीड़े रखे थे उन कीड़ों को हुक्म दिया था कि देखो एक बात याद रखना कि हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म को तुम्हारे लिए एक आर्दी ठिकाना बनाया है। मैं अपने मफहूम से बात अर्ज कर रहा हूं कि हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म को तुम्हारे लिए एक आर्दी ठिकाना बनाया है। याद रखना कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म तुम्हारी गिजा नहीं है। एक तरफ तो यह हाल, और दूसरी तरफ मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का यह हाल था कि फरमाते कि दाद हम अय्यूब रा मेरे पिदर, कि मैंने हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी मोहब्बत इन कीड़ों की दी थी जैसे बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बाप अपनी औलाद से जैसे मोहब्बत करता है कि बाप को मालूम है कि सर्दी का जमाना आ रहा है, माँ बाप को पता होता है कि ईद आ रही है, माँ बाप को पता होता है कि फला वक्त आ रहा है, उस वक्त के आने से पहले अपनी औलाद की राहत का और नेमत का और उनकी जरूरत का ख्याल पहले से रखते हैं। सही है कि जी, जैसे सर्दी आ रही है माँ बाप मशवरा करते हैं कि भाई बच्चों के सर्दी के कपड़े नहीं है, वो कहता है अच्छा ठीक है मैं अपनी सेटिंग बनाता हूं, बॉस से कहता हूं जरा मुझे थोड़ी सी एडवांस सैलरी दे दीजिए, ईद का जमाना आ रहा है मुझे बोनस मिलने वाला है, तो चलो मुझे नया मोबाइल लेना था, कोई बात नहीं मैं नया मोबाइल नहीं लेता, मैं यूं करता हूं कि अपने बच्चों के लिए कपड़े ले लूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो एक बाप अपनी औलाद, मां और बाप अपनी औलाद के लिए पहले से फिक्र करते हैं और सोचते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों को इन दुनिया में भेजा इतनी फिक्र फरमाई कि जब बच्चा पेट में होता है अभी दुनिया में नहीं आया होता कि उसका रिस्क लिख दिया जाता है। हदीस शरीफ में है ना, कितने जब 4 महीने का होता है उस वक्त उसका रिस्क उसको मिल जाता है। तो फरमाते कि हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी मोहब्बत दी थी जैसे बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। क्यों? बहरे मेहरमानी किरमा बेजरर, पूरा शेर क्या है, दादम अय्यूब रा महरे पिदर, बहरे मेहमानी किरमा बेजरर, वो जो बेजरर किरमा यानी कीड़े थे उनकी मेहमानी के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म रखा आपने। अब अगला आदमी को ये देखे कि साहब कितनी तकलीफ है कि इनके जिस्म में कीड़े हैं, तो ये है तकलीफ। अब है कि एहसास तकलीफ, उस एहसास तकलीफ को सोचिए। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान और इब्तला जो कि उम्मत को दिखाना था वो दिखा दिया और ये इब्तला दूर हो गई, किसी ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछा कि बताओ आप एक बात फरमाइए कि वो बीमारी की हालत थी अब आपकी ये शिफा की हालत है, उस वक्त आपकी हालत अच्छी थी या ये है? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शिफा नेमत है, बीमारी भी नेमत है लेकिन शिफा अल्लाह ताले की नेमत है। लेकिन फरमाया एक नेमत जो उस वक्त बीमारी की हालत में मेरे पास थी वो नेमत अब नहीं है। तो पूछा कि हजरत वो क्या नेमत थी? फरमाया वो ये नेमत ये थी जब सुबह होती थी अल्लाह ताला उससे फरमाते थे कहो अय्यूब क्या हाल है, उसकी लज्जत ऐसी होती थी कि शाम तक मैं उसकी लज्जत से मस्त रहता था اور جب رات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہو ایوب کیا حال ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہاں شعر پڑھا کہ تماشائے مقتل کو آئے وہ جو, تماشائے مقتل کو آئے جو وہ, تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی. عیادت کو آئے, عیادت کو آئے شفا ہو گئی, بیماری ہماری دوا ہو گئی. عیادت کو آئے شفا ہو گئی, بیماری ہماری دوا ہو گئی, تماشائے مقتل کو آئے جو وہ, تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی. تو یہ ہے, اب اس کو سوچیں, اس کو کہتے ہیں احساس تکلیف. لہذا میرے دوستو یاد رکھیے گا, اللہ تعالی اپنے اولیاء کو, اپنے فرمانبرداروں کو, ارے انبیاء علیہ السلام, صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی ذات مقدسات کو تو تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ, لیکن اللہ تعالی اپنے اولیاء, اپنے غلاموں کو ایسی لذت عطا فرماتے ہیں کہ اس کی تکلیف تو ہوتی ہے, تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اس تکلیف کے ساتھ جو لذت ہوتی ہے میرے پیارے دوستو, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گہرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. ایک دنیاوی مثال سے اور سمجھاتا ہوں تکلیف اور احساس تکلیف. مان لو ایک شخص کی بیوی جو ہے وہ میکے چلی گئی, اب اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہے, اب یہ بیچارہ اس کے غم میں سوکھ گیا اور وہ وہاں اپنے میکے جا کر دیسی گھی کھا کر آئی اور دیسی مرغے, کیونکہ بھائی گاؤں وغیرہ میں تو یہ چیزیں ملتی ہیں نا, اور یہاں تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک دیہاتی کسی بنگلے میں ملازم ہو گیا, اب اس کی پہلے دن جو دودھ والا دودھ لے کر آیا اس نے دودھ دیکھا, اس نے کہا اوے شرم کر یہ کیسا دودھ لایا, بے شرم کر کے یہ دودھ ہے یا پانی ہے, اگر کل صحیح دودھ نہیں لایا نا تو تیرا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا, صاحب کو شکایت کروں گا, بلکہ بیگم صاحب کو شکایت, بیگم صاحبہ کو شکایت کروں گا, کیونکہ معلوم ہے بیگم صاحبہ کا, اس کو پتا چل گیا تھا بیگم صاحبہ کی گھر پہ حکمرانی ہے. اب اس نے کہا اچھا بھائی غلطی ہو گئی, کل سے دودھ ٹھیک آئے گا. اگلے دن دودھ لایا, اس نے کہا ہاں یہ ہوتا ہے نا دودھ اصلی والا. اب صاحب دودھ پیئیں گے اور کہیں گے واہ سبحان اللہ. اس سے اگلے دن جب دودھ والا ہے تو دیکھا بیگم صاحبہ ٹہل رہی ہے, دودھ والا ہے, اس نے کہا سلام بیگم صاحبہ, اس نے کہا غصے میں, کہا دیکھ ہم تیرے سے 15 سال سے دودھ لے رہے ہیں, آج تک دودھ میں کوئی شکایت نہیں آئی, کل تو نے کیسا دودھ دیا کہ صاحب کا پیٹ خراب ہو گیا, کل تو خراب دودھ لے کر آیا تھا, جو پہلے دودھ لاتا تھا وہی لایا کر. یہ حال ہے صاحب کے میدوں کا. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ اب وہ, مان لو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں, کہ جب وہ بیوی واپس آئی, اب اس کو اس سے محبت ہے, خوشی کے مارے اس سے لپٹ گیا, اور آپ کو پتا ہے آگ ہے دونوں طرف, آگ ہوتی ہے دونوں طرف برابر لگی ہوئی, اس نے بھی لپٹا لیا. اب یہ بیچارہ اس کو تو لپٹا صحیح نہ سکا, اس نے جو زور سے دبایا اس کی ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز آئی. اب آپ ذرا محبت سے اندازہ لگائیے, دیکھو محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے سبحان اللہ. اگر اس عاشق سے پوچھا جائے کہ آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی اس کے دبانے سے, تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نکل جائے دم, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. شعر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ہو سکتا ہے کسی کو شعر نہ آتا ہو تو میں اس کی طرف سے پہنے پڑھ دیا, شاید ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی یہ شعر و شاعری ہمیں نہیں آتی, तो चलो मैंने एडवांस में पढ़ दिया। दादा उस वक्त यही कह देना जो मौलवी साहब ने कहा था, जो नियत मुल्ला की वही मेरी। इसलिए नमाज में यही है ना भाई मसला है, क्या भाई अगर जैसे ईद की नमाज होती है, अब ईद की नमाज की नियत तो लोगों को कहां याद, साल भर में हमें भी सच्ची बात है उसको रिफ्रेश करना पड़ता है कि याद करना पड़ता है भाई तीन तकबीरात पहली रकात में और तीन तकबीरात दूसरी रकात में। जाहिर बात है साल में एक दफा दो दफा वास्ता पड़ता है तो नियत रिफ्रेश करनी पड़ती है। और अवाम के लिए इतना आसान है जो नियत मुल्ला की वही मेरी, अवाम के लिए आसान काम हो गया ना। जैसे जनाजे की नमाज की नियत अगर किसी से पूछो तो कहेगा भाई हम जनाजा पढ़ लेते ये बहुत है हमारे लिए, तो उसमें भी यही आसान हो गया कि जो नियत इमाम की वही मेरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आप देखिए दुनियावी मोहब्बत का हाल यह है कि अगर कोई आशिक अपने महबूब से मिले और अगर उसे कोई तकलीफ भी पहुंचे तो कहता है कि नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात यह नहीं है कि हमें गम आए, हमें परेशानी आई, हमें तकलीफ आई, बात यह नहीं है। बात यह है कि हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है। अगर वल्लाह हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाए उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों कोई गम गम नहीं है, कोई तकलीफ तकलीफ नहीं है, कोई बेचैनी बेचैनी नहीं है। क्यों? बंदा हर वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की याद में ऐसा मस्त होगा। आप देखिए शहीद शहीद क्या बात है कि वो अपनी जान फिदा करने को तैयार है जबकि उसको मालूम है कि मेरी गर्दन कटेगी मेरे जिस्म, जबकि हम आम हालत में हमारे जिस्म में एक सुई भी लगे, सुई लगना तो दूर की बात, उसका तसव्वुर भी हमें परेशान कर देता है, लेकिन क्या बात है कि शहीद अपनी गर्दन कटवाने को तैयार है। बल्कि शहादत का मसला यह है कि जो शहीद है उसके जिस्म को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको गुस्ल नहीं दिया जाता। क्यों? इसका जवाब मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में दिया कि शहीद यह कहता है, शहीद गुस्ल देने वालों को यह कहता है, तकफीन और तदफीन करने वालों को कहता है कि लाश को मेरी तुम गुस्ल ना दो, लाश को मेरी तुम गुस्ल ना दो, बस खून में लिथड़ी रहने दो। क्यों? कल खून शहादत में लिथड़ा ये जिस्म उन्हें दिखलाएंगे। कि जिस्म खून में भरा हुआ है अल्लाह पूछेगा, आशिक को तो यही होता ना कि मेरा महबूब पूछे कि बता तुझे क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इतना ही तो पूछा था, वमा दिल का भी यमीन ही गया मूसा, ऐ मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है, क्या अल्लाह ताला को मालूम नहीं? और क्या यह जवाब काफी नहीं था? काल ही आसा कि अल्लाह ये मेरी छड़ी है, यह जवाब काफी नहीं था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, उन्होंने देखा मेरा महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे है, क्या फरमाते हैं, अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वलिया फिहा मआरिब उखरा, अल्लाह मैं इस पर सहारा लेता हूं, तकिया करता हूं और अपने गनम को भेड़ बकरियों को इससे हंकाता हूं, और ए मेरे महबूब इससे मेरे और भी काम है। आशिक मुफस्सिरीन सूफिया मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये क्या बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जुमला फरमाया, ये जुमला अर्ज किया वलिया फिया मारिब उखरा कि इसके और भी बहुत सारे काम है, ये क्यों कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? तो उशाक और सूफिया मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी वजह ये थी, क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा शायद अल्लाह मियां और पूछे और क्या काम है तो फिर मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं। इसको मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमा दे। और कहा, और मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह समझाया करते थे, फरमाया ये जो मोहब्बत है, मोहब्बत मोहब्बत का मिजाज है कि मोहब्बत मोहब्बत चुराता है, मोहब्बत आशिकों से मिलती है, आशिकों की सहबत से मिलती है। इसलिए फरमाया कि जो आशिकों की, जो इश्क की खासियत, जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, एक खाना बखाना है और एक सीना बसीना है। यानी दुनिया की आग घर से घर में लगती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत की आग सीने से सीनों में मुंतकिल होती है। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की आग का खासा है। इसलिए फरमाया किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठो, जब तक दीन का मजा लेना है वल्लाह, जब तक अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा ना होगी उस वक्त तक दीन का मजा ना मिलेगा। अल्लाह ताला अपने कर्म से हमारी जानों को अपनी मोहब्बत अता फरमा दे और अल्लाह ताला अपने कर्म से 100% हम सबको अपनी फरमाबरदारी नसीब फरमा दे। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العافية والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما اور یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما یا اللہ جن عاشقوں کی صحبت سے آپ کی محبت ملتی ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما اور اس محبت کو اس تعلق کو اپنی محبت اپنے قرب اور تعلق کا ذریعہ بنا یا اللہ تعالی نیک اعمال کی محبت عطا فرما نیک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ والوں کی محبت عطا فرما اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی محبت عطا فرما اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما ہماری ضروریات کو پورا فرما یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے شہروں اور ملکوں میں امن قائم کرما فرما یا اللہ ہمارے علماء ہمارے دینی مراکز مسلمانوں کی حفاظت فرما ہمارے شہروں کی حفاظت فرما امن کو قائم فرما اور یا اللہ ہمارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما ایک ایک مسلمان کے سارے عالم میں حفاظت فرما دونوں جہان کی عافیتیں راحتیں رحمتیں نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما ہر مسلمان کو نعمت عطا فرما دیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین